Krishna Hare 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 Ram Hare Rama Rama Ram Hare 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 Krishna Hare
Boliye
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama Rama Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Ram 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 Hare Hare
Boliye sabhi log
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Ram 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 Hare Hare Jai Radha Parvati Gaurani Sar Sita Ram Lakshman Hanuman Ki Jai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Nityai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura hari bo Nidai gaur pe manande Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om Ajnanati Mirandhasya Jnananjana Shalakaya Shakshurun Melitam Jera Tasme Shri Gurve Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahiyam Dadati Swapadantikram Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsa Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitam Shah He Krishna Karuna Sindhu Dina Vandho Jagatpate Gopesh Gopika Gandharadha Kanta Namastute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Vyascha Vipasindhu Vyayvacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Srila Prabhupada Ki Hare Krishna तो आप लोग जो दूर बैठे हैं थोड़ा करीब आ जाइए ताकि पीछे जो भक्त आए उनको स्थान मिल रहा है और पीछे नहीं बैठना चाहिए व्यास आसन के इस तरह बैठे कभी भी व्यास आसन के पीछे नहीं बैठा करो वैदिक नियम है अगर आप वैदिक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वैदिक नियमों के अनुसार जो वक्ता होता है उसको ऊंचा स्थान दिया जाता है और ऊंचे स्थान में बैठा जाता है और श्रोता होते नीचे बैठते हैं है ना जो भी वक्ता हो और विधि यही है कि आसन के पीछे नहीं बैठा जाता जैसे सुखदेव गोस्वामी जब कथा बोल रहे हैं तो उनका स्थान ऊंचा है और परीक्षित महाराज नीचे बैठे जबकि राजा है वो और आपने कभी नहीं देखा होगा सुखदेव गोस्वामी के आसन के पीछे सब बैठे हों है ना स्थान बिल्कुल नहीं है श्रवण करने की इतनी प्रबल इच्छा है तब अलग बात स्थान नहीं है बिल्कुल और इच्छा बहुत है तो ऐसा कई स्थानों में देखा गया है आप रशिया जाएंगे रशिया में ऐसा है कि बहुत ही कम डिग्री टेम्परेचर -30 -25 डिग्री में भी लोग मंदिर के बाहर बैठ के प्रवचन सुनते हैं मंदिर में जगह नहीं होती पर यहाँ तो बहुत जगह है सो सकते हैं आप सो के सुन सकते हैं नहीं तो आज हम चर्चा करेंगे गुरु तत्व पर किस पर चर्चा करेंगे गुरु तत्व शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि अगर हम गुरु तत्व को समझ जाते हैं तो भगवान विष्णु तत्व शंभु तत्व और शक्ति तत्व और जीव तत्व आदि तत्वों को समझना आसान हो जाता है क्योंकि गुरु को बताया गया है पारदर्शी माध्यम है भगवान को समझने के लिए गुरु इज ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया टू सी द गॉड अगर आप देखना चाहते हैं भगवान को तो गुरु नामक चश्मे को लगाना पड़ेगा जैसे आपने जिसमें चश्मा लगा चश्मा निकालते हैं तो धुंधला दिखता है ना तो चश्मा पारदर्शी है लेकिन उसमें पावर है क्या करने का वस्तु को स्पष्ट दिखाने का वैसे ही गुरु के अंदर शक्ति है पारदर्शी भी है भगवान को दिखाने के लिए तो गुरु तत्व को समझना बहुत जरूरी है गुरु तत्व के कई भाग हैं अगर गुरु तत्व पर चर्चा किया जाए तो 10-15 दिन कम पड़ेंगे इतना विस्तार है लेकिन कुछ मुख्य बातें और जो हमारे
जीवन प्रारंभिक जीवन में आवश्यक है उन बातों पर चर्चा करेंगे। ज्यादा उच्च स्तर का चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम में से कई लोग नए भी हैं, इतना नहीं जानते हैं तो कंफ्यूज ना हो जाए। तो पहला प्रश्न यही आता है कि गुरु की आवश्यकता क्या है, नेसेसिटी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, क्या आवश्यकता है। तो बोले जरूरी है, हम खुद ही गुरु हैं, है ना, तो हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो अगर ध्यान से हमने जीवन को देखे हैं तो प्रत्येक क्षण में गुरु की आवश्यकता है ना। शिशु, छोटा बच्चा, उसको उसकी माता उसकी गुरु होती है। शिशु का पहला गुरु उनकी माता होती है, कई चीजें सिखाती है ना। सोना नहीं आता बच्चे को, सोना भी नहीं आता, जब वो नींद आती है तो वो रोता है बच्चा, है ना, सिर्फ रोता है, कोई सोना नहीं आता है कि आंख बंद करके लेट जाओ नींद आ जाएगी, ऐसा नहीं आता है, रोता है, खूब रोता है। तो माँ क्या करती है, उसको सोना सिखाती है, लिटा देगी, थपथपी लगाएगी, सुलाएगी, सो जाता है। खाना नहीं आता, खाना खिलाना सिखाता है। जो जीवन का मुख्य चीज है, उसका अंग है, वो बिना खाए तो कोई जीवित रह नहीं सकता, माँ उसको जबरदस्ती सिखाती है, है ना, हाथ पर बांधती है, पकड़ती है, नाक दबाती है, मुंह खोलता है, पहला खोर अंदर, फिर वो बच्चा थूकता भी है, उसको डांट पड़ती है, मार पड़ती है, डरा के, धमका कर, गब्बर सिंह और भूत का वास्ता देकर उसको खिलाया जाता है, है? तो गुरु जो है, इसलिए शिशु जीवन से, प्रारंभिक जीवन से ही शुरू हो जाता है। मामा, पापा, चाचा, आसान शब्दों को बोलना सिखाया जाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में शिक्षक मिलते हैं, कई सीनियर होते हैं स्कूल में, स्टूडेंट्स वो सिखाते हैं, टीचर सिखाती है, घर में माँ बाप सिखाते हैं, भाई बहन सिखाते हैं, फिर और बड़ा होता है तो हर क्षेत्र में आवश्यकता है। आप ऑफिस में जाएंगे तो आपका बॉस सिखाएगा आपको, आपके सीनियर सिखाएंगे, घरों में अगर लड़कियां हैं तो माता कुकिंग करना सिखाती हैं, बड़ी बहनें सिखाती हैं सिलाई कढ़ाई, है ना। तो हर समय हमें सीखने की आवश्यकता है, ऐसा एक क्षण नहीं है, आप मृत्यु के क्षण पर लेटे हुए तब भी ये नहीं बोल सकते कि मैं अब सब कुछ सीख चुका हूँ, मुझे सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी गुरु की आवश्यकता हर क्षण हमेशा पड़ती है। उस गुरु से बताया गया है, गुरु की आवश्यकता एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट किसको बोला जाता है, वास्तविक या ऐसा कि जिसको जिसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, है ना, एब्सोल्यूट बोला गया है। तो इसलिए कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मुझे आवश्यकता नहीं है, तो ठीक है भौतिक संसार में आवश्यकता है, पर आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता नहीं है। ग्रंथ है, ग्रंथ को पढ़ो और समझ जाओ। नहीं, प्रभुपाद जी बोलते ठीक वैसे ही, जब मेडिकल का स्टूडेंट है, मेडिकल बुक पढ़कर, MBBS बुक पढ़कर डॉक्टर नहीं बन सकता, उसके लिए एक एक्सपीरियंस व्यक्ति चाहिए जो बता सके कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। भगवद गीता 5000 वर्ष पूर्व कहा गया था, लेकिन आपके जीवन में कितना उपयोगी है, कैसे उपयोग करें, इसके बारे में पता नहीं, इसलिए हमें आवश्यकता पड़ती है। तो पहला बात क्या इंपॉर्टेंट है, नेसेसिटी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु की आवश्यकता मस्ट है हर क्षेत्र में। अगर आवश्यकता है बचपन से लेकर आज तक हमें आवश्यकता पड़ी है किसी व्यक्ति की जो शिक्षा दे, तो क्या हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी सब्जी वाले से, पान वाले से शिक्षा लेनी चाहिए? मैथमेटिक्स के टीचर के पास जाते हैं क्या सीखने के लिए, केमिस्ट्री सीखने जाते हैं, मैथमेटिक्स, और केमिस्ट्री टीचर के पास, तो जो जिस सब्जेक्ट का टीचर है उसके पास वही चीज सीखने जाते हैं। तो आध्यात्मिक चीज सीखने के लिए सब्जी वाले के पास जाने से मतलब नहीं होगा, बोलेंगे मैं जाऊंगा, जो कि आजकल रेडियोज में आते हैं ना, कोई बता रहे थे कि रेडियो में अलग अलग प्रकार के गुरु आते हैं, है ना, प्रॉपर्टी गुरु, प्रॉपर्टी के भी गुरु होते हैं, प्रॉपर्टी बताते हैं, स्टेट गुरु, है ना, बिजनेस गुरु, स्टडी गुरु, लव गुरु, लव गुरु भी है, सिखाते हैं लव कैसे करना, है नहीं संसार में, तो वो सबके लिए गुरु की आवश्यकता है ना। जब आध्यात्मिक जीवन की आएगी तब गुरु की आवश्यकता नहीं, जी हम खुद कर लेंगे, हम तो एक्सपर्ट हैं, कब बन गया एक्सपर्ट, आध्यात्मिक जीवन के लिए भी गुरु की आवश्यकता एब्सोल्युटली डिजायरेबल है। तो इसलिए शास्त्रों में इसका बताया गया, इसलिए भक्ति का जो 64 भक्ति के अंग है उसका पहला प्रारंभ होता है आदो गुरुपाद आश्रय, है ना। मतलब आदो का मतलब प्रारंभिक अवस्था में गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता, गुरु की आवश्यकता होती ही होती है। तो आध्यात्मिक जीवन का पहला प्रारंभ होता है गुरु की शरण लेना। अगर जिसने गुरु की शरण नहीं ली है इसका मतलब उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ नहीं हुआ है, ऊपरी तौर से चल रहा है। अब देखिए जब हम सड़क पर कीर्तन करते हैं तो कितने लोग हैं जो आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ नहीं किए हैं, लेकिन आपके संपर्क में या संकीर्तन करने वाले भक्त या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले भक्तों के संपर्क में जब आते हैं तो उनका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो जाता है। जब ग्रंथ देते हो, उनको इन्वाइट करते हो, उनको प्रोग्राम से बुलाते हो, तो आप जो सुनते हो, जो जानते हो, उनको शिक्षा देते हो, तो कुछ स्तर पर आप सभी का बन जाते हो, गुरु बन जाते हो। रूपा जी करते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने बताया, हमारा आज्ञा गुरु है तारे देश, जारे देखो तारे कृष्ण उपदेश। मेरी आज्ञा से गुरु बनिए, चैतन्य महाप्रभु रहे प्रभु बोल रहे हैं। कैसे गुरु बनिए? रूपा जी बोलते हैं जो आपने सुना है एज इट इज बता दीजिए दूसरों को, आप गुरु बन जाएंगे। तो बोले गुरु जी हमने तो सुना है गुरु का स्तर बड़ा ऊंचा होता है। तो गुरु के कई स्तर होते हैं, तो चार प्रकार के गुरु शास्त्र में वर्णन किया गया। पहला जो स्तर है, पहला गुरु जो होते हैं वो वर्तमान गुरु कहा गया है, या पथ प्रदर्शक गुरु। क्या कहा गया है? पथ प्रदर्शक गुरु, जो रास्ता दिखाते हैं। दूसरे हो गए शिक्षा गुरु, जो शिक्षा देते हैं आपको आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, है ना, और शिक्षाओं को कैसे पालन करना है, अपने जीवन अपनाना है। बिना शिक्षा के कोई कार्य नहीं होता है, जैसे माता भी शिक्षा गुरु है शिशु का। उसके बाद होते हैं दीक्षा गुरु, मैं इनको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। उसके बाद होते हैं दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जो आपका संपर्क स्थापित करते हैं भगवान से, दीक्षा देकर आपको परंपरा से जोड़ते हैं और उसकी प्रकार से आप भगवान से जुड़ जाते हो, उसको बोलते हैं दीक्षा गुरु। उसके बाद होते हैं चैत्य गुरु, चौथे कौन से हैं? चैत्य गुरु। चैत्य गुरु जो है हृदय में निवास करते हैं, उनको परमात्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? परमात्मा। तो ये चार प्रकार के गुरु बताए गए हैं, इसमें सभी अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, ठीक है। सबका स्थान इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बोल सकते कि प्रभु जी दीक्षा गुरु इंपॉर्टेंट होते हैं ना, कोई बोले नहीं नहीं शिक्षा गुरु इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखा जाए तो सारे लोग इंपॉर्टेंट है, सारे लोग उतने ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबका अपने आप का रोल है ना। कभी कभी विशेष परिस्थिति में कोई एक ही व्यक्ति तीन गुरु का कार्य करता है, जैसे प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी हिप्पीज के लिए क्या थे? पथ प्रदर्शक गुरु थे, सड़क पर कीर्तन किया तो लोग उसको सुनकर आए, उनको बुलाया, अपने मैचलेस ग्रुप के लॉफ्ट पे ले गए, वहां पर लेक्चर दिया, शिक्षा नहीं शिक्षा हो गया, उसके बाद उन्होंने दीक्षा दे दी। तो एक ही व्यक्ति कभी कभी पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु और शिक्षा गुरु बन सकते हैं। पर जब सोसाइटी बड़ी हो जाती है और दीक्षा गुरु का कार्यभार जो होता है बढ़ जाता है, प्रचार कार्य बढ़ जाता है, तो उसके लिए उस समय कठिन हो जाता है शिक्षा भी देना। कभी कभी हमेशा उपस्थित नहीं रह सकते, यहां तक कि वो पथ प्रदर्शक गुरु भी नहीं बन सकते। तो इसलिए अलग अलग गुरु उपलब्ध हो जाते हैं, पर हाँ चैत्य गुरु का स्थान कोई नहीं ले सकता। कभी कभी ऐसे भी बताया गया है कि चैत्य गुरु जो हृदय में बैठे हुए हैं भगवान, उसके ही एक भिन्नांश होते हैं, एक अंश होते हैं जो बाहर उपस्थित गुरु होते हैं, वही मार्गदर्शन करते हैं। तो चलते हैं पहले गुरु के पास। पहले गुरु कौन है? वर्तमान गुरु या पथ प्रदर्शक गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु जो आपको रास्ता दिखलाते हैं ऐसे सेंटर्स में, ऐसे मंदिर में या भक्ति में आने के लिए। तो उनका कार्य क्या होता है? जैसे कि बाहर ग्रंथों का वितरण करना, हरि नाम करना, लोगों को बताना कि कहाँ पर सेंटर है, कहाँ पर प्रोग्राम होता है। जिसने पहली बार आपको उंगली दिखाई है इस तरफ कि यहाँ पर है मोधा दुम द्वीप, वहाँ जाइए, क्लास है आपका। जिसने आपको पहली बार भगवद गीता दी है और बताया यहाँ पर कार्यक्रम होता है हरे कृष्ण वालों का, वो व्यक्ति वास्तव में आपका क्या बन जाता है, पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाया जिसने, तो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो व्यक्ति हो सकता है कि भक्त ना हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे बिल्लू मंगल ठाकुर थे, बिल्लू मंगल ठाकुर जो थे बहुत शराब पीते थे, मांस खाते थे और वैश्य के पास जाते थे, तो उनके पिता का देहांत हो गया और पिताजी की चिता जल रही थी, चिता को छोड़कर अपने अपनी प्रेमिका यानी वैश्य से मिलने के लिए जाने लगे, चिता को जलता हुआ छोड़कर, इतने ज्यादा आसक्त थे। वो नदी को पार करना चाहते थे, नदी में भयंकर बाढ़ थी, कोई नाविक जाना नहीं चाहता था, तो एक लाश को पकड़कर, लाश तैरती है जब मर जाती, मृत्यु हो जाते हैं, लाश को बॉडी को डाल दिया जाता है पानी में, जलों में, तो उस पर बैठकर तैरकर वो पार कर गया और इतनी बदबू उनके शरीर से आ रही थी और जब तेज बारिश हो रही थी तो दरवाजा नहीं खोला वैश्य ने, तो उन्होंने क्या किया, दरवाजा खटखटाया नहीं खुले, तो एक वस्तु को पकड़कर चढ़ने लगे, आज पता चला सांप था, सांप को पकड़ के चढ़ गए और दरवाजा खड़खड़ा, खिड़की से कूद कर अंदर गए और बोले कि देखो मैं तुम्हारे पास आ गया, तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। वैश्य को बोलने लगे, तो वैश्य ने कहा तुमने जितना प्रयास किया है, लाश के ऊपर लट गया है और अपने पिता का चिलती चिता को छोड़ कर आए, नदी को पार किया, इतना जोखिम लिया, सांप चढ़ गया है, इतना जोखिम लिया, इतना प्रयास अगर कृष्ण को पाने के लिए करते तो शायद कृष्ण मिल जाता। वैश्य ने ऐसे ही बोल दिया, इससे उसकी चेतना में परिवर्तन हुआ। बिल्लू मंगल ठाकुर जो थे उन्होंने सोचा कि हाँ बात तो सही है, मैंने कभी प्रयास ही नहीं किया भगवान की, तो बोलते भगवान कहाँ मिलेंगे, तो वो चिंतामणि जो थी वो वैश्य ने कहा कि जाओ वृंदावन मिलेंगे, वृंदावन चले और इस प्रकार जाके महान वैष्णव बने हमारे वैष्णव संप्रदाय में बिल्लू मंगल ठाकुर। बाद में उनकी आंखें चली गई क्योंकि स्वभाव खराब था, तो एक ब्राह्मण के पीछे पीछे जा रहे थे, उसके घर में घुस गए, दरवाजा खटखटाए तो ब्राह्मण निकला, उसने बोला क्या सेवा कर सकते हैं, आइए बैठिए, जलपान कराया, भोजन कराया। बोले आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप तो एक वैष्णव लगते हैं। बोलते हैं कि स्त्री अंदर गई है, मैं उनका आलिंगन करना चाहता हूँ, उनका चुम्बन करना चाहता हूँ, क्योंकि आदत वही थी, अभी पूरी तरह आदत गई नहीं थी। तो क्या किया उन्होंने, फिर जब वो स्त्री को अपनी पत्नी को जाकर बोलते हैं ब्राह्मण कि एक वैष्णव आया उसकी सेवा कीजिए, वो जो चाहता वो कीजिए, ब्राह्मणी को भेजा। देखिए उस जमाने में कैसे लोग होते थे, तो ब्राह्मणी आई अपने आप को श्रृंगार करके सेवा के लिए, पति की आज्ञा का पालन करने के लिए। जब देखा इतना अच्छा परिवार है, ब्राह्मण इतने अच्छे, ब्राह्मण इतने अच्छे, मैं कितना गिरा हुआ हूँ, उनको एहसास हो गया उनके स्वभाव से। उन्होंने क्या किया, बोला कि हे माते अपने बालों में लगा हेयर पिन दीजिए, हेयर पिन दिया, अपनी आंखों को फोड़ लिया। बोले ये आंखें ही है जिसकी वजह से मैं आप पर एक दृष्टि डाल रहा हूँ, जब तक आंखें रहेंगी तब तक संसार को भोगने की इच्छा रहेगी। तो आंखों को फोड़ लिया, लेकिन वो भौतिक आंखें तो चली गई, लेकिन उनको आध्यात्मिक आंखें मिल गई। उसके बाद वो दिन रात कृष्ण का भजन करते थे और बहुत सारे बच्चे जो भजन लिखे उन्होंने, इतने भजन लिखे हैं और इतने महान भक्त बने कि मोक्ष भी उनके दरवाजे पर खड़े होता था और कहते थे कि मुझे अंदर आने की अनुमति दीजिए। बोलते भी रुक जाओ, मैं भगवान के भजन कर रहा हूँ, मोक्ष छोड़ लीजिए, स्वयं मोक्ष जो देवी है वो वेट कर दीजिए। तो देखिए एक व्यक्ति, एक वैश्य उनके जीवन में परिवर्तन लेकर आए, तो इसलिए कोई भी हो सकता है व्यक्ति। हमारे जीवन में भी कई लोग ऐसे मिले हैं जो हमको भक्ति में लेकर आ, शायद नहीं है, लेकिन वो एक माध्यम बने हमारे भक्ति का, इसलिए गुरु का स्थान उनको दिया जाता है। उसके बाद आते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु में भी कई स्तर होते हैं, अलग अलग स्तर के, अलग अलग प्रकार से जो आपका, आपके जीवन में जिनका कमिटमेंट है या जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुरक्त है, उसके अनुसार कैटेगरी बनती है शिक्षा गुरु की। जैसे यहाँ कितने लोग आपको लेक्चर देने आते हैं, वो सब शिक्षा गुरु के स्तर पर, क्योंकि शिक्षा आप उनसे ले रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो आपके जीवन में आपकी प्रगति को वॉच करता है, देखता है आप प्रगति कर रहे कि नहीं कर रहे, ध्यान देता है, आपको गाइडेंस देता है, वो वास्तव में आपका सबसे सबसे निकटतम शिक्षा गुरु माना जाता है। और एक होते हैं श्रवण गुरु। कभी कभी हम क्या करते हैं, सिर्फ उनके उनके कीर्तन को, उनके लेक्चर्स को सुनते हैं, है ना, कभी कभी ऑडियो सुनते हैं या पर्सनली सुनते हैं, तो श्रवण गुरु की कैटेगरी में आते हैं, जो शिक्षा गुरु है पर श्रवण कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इस्कॉन के लिए सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट सबसे प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु कौन है? श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद है, क्योंकि हम प्रभुपाद की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ जो बैठकर बोलता है वो प्रभुपाद की शिक्षाओं को ही बोलता है। इसलिए हर व्यक्ति का जो इस्कॉन संस्था में है उसका पहला शिक्षा गुरु कौन है? प्रभुपाद। अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं आपका पहला शिक्षा गुरु हूं तो वो ढोंगी है। प्रभुपाद जी बोलते हैं इस रास्कर, जो क्लेम करता है ना। गुरु कभी क्लेम नहीं करते कि मैं गुरु हूं। पहली बात हमेशा ये बोलेगा क्या, मैं तो इन सबका दास हूं। प्रभुपाद जी से जैसे किसी ने पूछा प्रभुपाद जी आप मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मेरे गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आप सब लोगों की सेवा के लिए मुझे यहाँ भेजा है, मैं तो आपका दास हूँ। ये भी नम्रता है। तो शिक्षा गुरु का स्तर होता है अलग अलग। तो ये इसके स्तर पर सम्मान सबका बराबर करना है। आप समझ रहे हैं, वर्तमान गुरु या पथप्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, चैत्य गुरु, सबका सम्मान बराबर करना है। लेकिन अलग अलग स्तर होते हैं, अलग अलग आपके जीवन में उनका कमिटमेंट होता है ना, लगाव होता है आपसे। आपको गाइडेंस देते हैं, शिक्षा देते हैं, आपकी गलतियों पर टोकते हैं, डांटते हैं, रोकते हैं, तो वो गुरु का कर्तव्य है। प्रभुपाद जी बोलते हैं गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य में कमी देखना, और कोई नहीं देख सकता। कि और कोई देखता भी है तो हो सकता है कि गलत देख सके, लेकिन गुरु सिर्फ करुणावश, दयावश उस शिष्य के अंदर कमी देखता है ताकि उसको सुधार कर सके। शिक्षा गुरु का कार्य है। और दीक्षा गुरु जो दीक्षा देकर आपका संबंध जोड़ते हैं भगवान से, जैसे कि ये माइक है, ठीक है, मैं इसमें बोल रहा हूँ तो माइक जो है इसका वायर जुड़ा हुआ है सिस्टम से, सिस्टम जुड़ा हुआ है पावर प्लग से, ठीक है, जो पावर लगा हुआ है ये कनेक्शन वायर आया है पावर हाउस से जहाँ पावर जनरेशन हो रहा है। तो पावर हाउस कौन हो गया? कृष्ण। कृष्ण का जो पावर है वो मान लीजिए पावर हाउस होता है स्विच बोर्ड तक आता है, तो स्विच बोर्ड हो गए गुरु आपके। तो गुरु से कनेक्शन कैसे बनेगा? जैसे ही आप प्लग जोड़ते हैं तो आपका कनेक्शन किससे हो गया? पावर हाउस से। वैसे ही जैसे ही आप गुरु से दीक्षा लेते हैं गुरु आपका कनेक्शन जोड़ देते हैं कृष्ण से। इसलिए दीक्षा गुरु का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। और दीक्षा गुरु क्या देते हैं? मंत्र बीज देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। तो ये मंत्र का बीज जो है आपके हृदय में रोपित करते हैं। जब हरे कृष्ण मंत्र का आप जप करते हैं, उसका सिंचन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो ये जब फलीभूत होता है भक्ति, और भक्ति प्रगति करते करते क्या करता है? ब्रह्मांड को भेद कर गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरण तक पहुंच जाता है ना। लेकिन बीज अगर नहीं होगा तो कैसे बढ़ेगा है ना। तो जो दीक्षित भक्त होते हैं उन पर विशेष कृपा हो चुकी है कि उनको बीज मिल चुका है। अब उनका काम है उसको श्रवण कीर्तन के द्वारा उसका सिंचन करें, उस पौधे को रोपण अच्छा हो चुका है, बीज आ चुका है, उसका सिंचन करें, तब वो क्या होगा? पौधा बढ़ेगा। और जो अभी तक दीक्षित नहीं है उनको दीक्षा लेने के लिए तत्पर होना पड़ेगा। बिना दीक्षा के भगवत धाम जाना मुश्किल है। यहां तक बताया गया नामुमकिन बताया गया है। जो कलयुग में कोई ऐसा गुरु नहीं मिलेगा जो दीक्षा के अलावा आपको भगवत धाम ले जाने में सहायता करे, क्योंकि दीक्षा से क्या होता है? कमिटमेंट होता है आपका, है ना, कि मुझे दीक्षा ले लिए हैं तो इनकी सेवा करनी है, इनकी निष्ठापूर्वक सेवा करनी है, इनकी आज्ञा का पालन करना है, तभी इसलिए दीक्षा आवश्यक है। जब दीक्षा नहीं होती वैसे ही है जैसे कि स्त्री अविवाहित है, किसी के आश्रय में नहीं है, अनाथ है, तो स्त्री को जिस प्रकार पुरुष के साथ रहना जरूरी है, खासकर पति के साथ, और उसके आगे का पालन करना जरूरी है, वैसे ही शिष्य को अपने गुरु के आगे का पालन करना पड़ेगा। गुरु और शिष्य के जो संबंध होता है दीक्षा के जो रीति के अनुसार वैसे ही है जैसे स्त्री और पुरुष का। दीक्षा होती है तो उसके पहले एक साल गुरु देखते हैं शिष्य को, शिष्य देखते हैं गुरु को कि मेरे लिए योग्य है कि नहीं, एक साल। उसके बाद नहीं जिंदगी में कोई नहीं देखता एक दूसरे को। अयोग्य शिष्य है तो उसको योग्य बनाया जाएगा और गुरु में अयोग्यता नहीं देखी जाती है। दीक्षा के बाद अगर शिष्य अपने गुरु को चेक करता है, गारंटी है करोड़ों अरबों खरबों जन्म तक नरक जाएगा, क्योंकि एक साल का मौका मिला था चेक करने का, आप क्या चेक कर रहे हो। वैसे ही होता है जैसे जब हम लोग देखते हैं स्त्री के लिए पुरुष का चुनाव किया जाता है या पुरुष के लिए स्त्री का चुनाव किया जाता है तो ढूंढा जाता है ना, एंगेजमेंट होता है, सगाई होती है, सगाई के बाद कुछ दिनों तक तो देखा जाता है। सगाई में भी प्रावधान होता है कि एकदम विपरीत अवस्था होने पर त्याग आ जा सकता है, लेकिन विवाह के बाद त्यागने का कोई संबंध शास्त्रों में नहीं दिया हुआ। ठीक उसी प्रकार एक साल गुरु देखते हैं कि शिष्य बनने योग्य है कि नहीं, इसमें गुण है कि नहीं, और हम देखते हैं कि गुरु हम गुरु को धारण कर लिया है इसलिए हम गुरु की बात श्रवण करते हैं, संबंध बनाते हैं। एक साल के बाद क्या होता है, गुरु दीक्षा देते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं तो अग्नि के सामने साक्षी बनाते हैं भगवान को, वैष्णवों को, देवताओं को, स्वयं श्रीराम को, ये सब साक्षी होते हैं उस समय। तो उसी प्रकार जब स्त्री और पुरुष का विवाह होता है तो अग्नि होती है, अग्नि के सामने सभी बैठे रहते हैं, समाज होता है, माता पिता भाई बहन वैष्णव देवता सभी होते हैं, वो सब साक्षी होते हैं विवाह का, और कमिटमेंट होता है। फिर पत्नी बोलती है मैं जीवन भर इनके आगे का पालन करूंगी, स्वामी मानूंगी और पूरी तरह पतिव्रता का व्रत का पालन करूंगी। तो पति बोलता है मैं इसको पूर्ण सुरक्षा का दायित्व देता हूँ कि सेवा करूंगा, इसका ध्यान रखूंगा ताकि इसको कोई कष्ट ना हो। वैसे शिष्य बोलता है कि चार नियमों का पालन करूंगा और गुरु के आगे का पालन करूंगा, छोला माला का जप करूंगा, ग्रंथों का अध्ययन करूंगा, गुरु के आगे का बड़ी कठोरता से पालन करूंगा। जब ऐसा बोलता है तो गुरु बोलते हैं मैं इसे गोलोक धाम ले जाने का वादा करता हूँ। तो ठीक उसी प्रकार जब शिष्य आज्ञा का पालन करना बंद कर देता है तो गुरु त्याग देते हैं। जैसे कि पत्नी पतिव्रता न होने के बाद वो जो पर पुरुष से गमन करती है तो पति उसको त्याग सकता है, शास्त्रों में इसका वर्णन भी किया गया। ऐसी परिस्थिति में जिस परिस्थिति में स्त्री वैश्य जैसा कार्य करती है, पर पुरुष गमन करती है तो पुरुष उसको त्याग सकता है। वैसे ही गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है और अपने ही मनोधर्म से कार्य का जीवन कार्यान्वित करता है तो गुरु उसको त्याग सकते हैं। तो वैसे ही वो शिष्य प्रभुपाद जी बोलते हैं उसी समय वो शिष्य शिष्य नहीं रहा, शिष्य के पद से वो च्युत हो गया, गिर चुका है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आज्ञा का पालन करना। फिर जीवन काल में क्या करता है, शिष्य दीक्षा लेकर गुरु से संपर्क बनाता है, संबंध बढ़ाता है और आज्ञा को लेकर अपने जीवन में उसका पालन करता है। चैत्य गुरु, चैत्य गुरु कौन होते हैं, जो हृदय में निवास करते हैं भगवान परमात्मा स्वरूप में। गोलोक निवसति अखिलात्म भूतो, भगवान का निवास करते हैं गोलोक में, लेकिन अखिलात्म भूतो मतलब सारे जीवात्माओं के हृदय में भी निवास करते हैं। एक ऐसे गुरु हैं कि जो पशुओं के रूप में भी हम जन्म लेते हैं तब भी हमारे हृदय में रहते हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है जब वो कोई गलत काम करते हैं, जब चीनी के डब्बे से चीनी चोरी करते हैं, फ्रिज से गाजर चोरी करते हैं, जेब से पैसे चोरी करते हैं तो हमें लगता है कि गलत है। कितने लोगों को लगता है, लगता है ना, कोई पाप कार्य करते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। पीछे से आवाज आती है गोलमाल है भाई सब गोलमाल, ऐसा लगता है महसूस होता है गलत काम कर रहे हैं, क्रोधित हुए हैं, चोरी की है ना, झूठ बोला है। झूठ बोलने से भयभीत क्यों हो जाते हैं, आपने महसूस किया है, एक बच्चे को हवा में फेंकी वो घबरा जाता है, बच्चों को ये नहीं पता कि नीचे गिर के मैं मर जाऊंगा, फिर क्यों घबराता है, बच्चा तो अज्ञानी होता है, लेकिन क्योंकि भय इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं तो हर क्षण हमें गाइडेंस देते हैं। अब बात आती है कि गाइडेंस सुनाई क्यों नहीं देता, कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम गलत कर रहे हैं पर हमें समझ में नहीं आता कि गलत है, या ऐसा सुनाई भी देता है तो हम निग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है पता, क्योंकि हम लोग भौतिक जीवन में बहुत ज्यादा डूबे हुए, जैसे कि मोबाइल, आपके पास मोबाइल, सबके पास मोबाइल है, अगर उस मोबाइल में अगर हम लोग कवर चढ़ा दें, लेमिनेशन कर दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 200, 300, 500, 800, 900, इतना मोटा हो जाएगा, हो जाएगा मोबाइल। उसमें मैं कॉल लगाऊंगा, कॉल लगेगा, कॉल आएगा, आवाज आएगी नहीं, क्योंकि इतनी परत चढ़ चुकी है। हमारे अंदर भी भौतिक इच्छाओं की इतनी परत है, इतनी परत है आत्मा के ऊपर, इतनी ज्यादा परत, इतनी मोटी परत है कि परमात्मा की आवाज सुनाई देना बंद हो गया है, सुनाई नहीं देता है। कठोपनिषद में बताया गया, एक पर्वत, एक पेड़ पर दो जीवा, दो पक्षी बैठे हुए हैं, और उस एक पक्षी जो है वो उस पेड़ पर दो प्रकार के फल है, एक कड़वा एक मीठा, और उसको खाता है, कभी कड़वा खाता है तो उसका मुंह अच्छा नहीं लगता है, जब मीठा खाता है तो आनंद आता है, लेकिन दूसरा पक्षी उसको देखता रहता है, वॉच करता रहता है, विटनेस का कार्य करता है, उपदृष्टा और अनुमंता बनता है, तो उसको आज्ञा देता है और बताता है कि किस प्रकार वो फल को ग्रहण कर सकता है। तो ये दो पक्षी कोई नहीं, आत्मा और परमात्मा एक ही शरीर में निवास करते हैं, शरीर एक पेड़ है और उस पेड़ में दुख और सुख का अनुभव हम करते हैं। परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, गाइडेंस देते हैं, किस प्रकार फल को खाओ, उस प्रकार हम दुख और सुख को ग्रहण करते हैं। पेड़ क्या है? शरीर की तुलना है। दो चिड़िया कौन है? आत्मा और परमात्मा। दुख और सुख जो है कड़वे और मीठे फल है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो परमात्मा की तरफ जो आत्मा है पर देखता भी नहीं है, कितना दुर्भाग्यशाली है। अगर वो एक बार देख लेगा तो इस पेड़ पर रहने की आवश्यकता उसको नहीं होगी, है ना? तो क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि अनंत कोटि इच्छाएं जो है उसके कारण वो क्या करता है, बार बार वो फल को खाने के लिए सोचता रहता है। फल की पहचान नहीं है उसको, अच्छा कौन सा है, खराब कौन सा है, वो जब खाता है तभी उसको पता चलता है। कई बार बरसात होता है ना, हमारे प्लेट में खीरा आ जाता है, हम खाते हैं, चबाते रहते हैं, फिर आ जाता है चबा गड़बड़ निकलो, ये तो कड़वा है, फेंक भी नहीं सकते, खाना पड़ता है ना। तो अगर हमारा परमात्मा से संपर्क अच्छा है तो परमात्मा हर क्षण बता देंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि परमात्मा से संपर्क हमारा अच्छा नहीं है इसलिए माया हमें गाइडेंस देती है, ये करो ये अच्छा है, ये खाओ ये अच्छा है, डिस्को में जाओ पॉपकॉर्न खाओ, पेप्सी पियो, पीवीआर में जाओ आनंद आएगा, हमें यहाँ सुख वहाँ सुख यहाँ सुख ढूंढते हैं। तो ये भौतिक इच्छाएं जैसी भक्ति के माध्यम से कम हो जाती है तो परमात्मा आपको गाइडेंस देते हैं कि सुख वास्तविक सब कहाँ है। तो गुरु का बहुत आवश्यकता हमारे जीवन में, यानी चारों गुरु। तो ये चारों गुरु जो हैं ये हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं पर हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, इसी कारण से हमें साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। गुरु आते हैं हमारे जीवन में पर क्या सोचते हैं, मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, मेरा गुरु तो मैं ही हूं, सारा शिक्षा ही मेरे से शुरू होता है। और वास्तविक रूप में जो व्यक्ति गुरु धारण नहीं करना चाहता है, प्रमाणिक गुरु, वो व्यक्ति एक नंबर का अहंकारी व्यक्ति होता है, घमंडी होता है, क्योंकि विनम्रता होगी तभी गुरु प्राप्त होंगे। जब तक विनम्रता नहीं है ना, गुरु प्राप्त नहीं होंगे। अर्जुन और कृष्ण बचपन से साथ साथ खेले, लगभग एक ही उम्र के थे, लेकिन कभी भी कृष्ण ने उन्हें ज्ञान नहीं दिया। जो खेल की बात होती खेल की होती थी, पॉलिटिक्स की बात पॉलिटिक्स की होती थी, लेकिन भगवत भक्ति के बारे में कभी ज्ञान नहीं दिया। जब उन्होंने दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में कहा, क्या कहा, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे कृष्ण मैं आपका शिष्य हूं, आप जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है वो बताइए, ये जीवात्मा आपसे प्रार्थना कर रहा आपके शरणों में। तब जाकर कृष्ण ने बोला, तुम ब्राह्मण जैसे ब्राह्मण जैसा बात कर रहे हो, तुम तो एक नंबर के मूर्ख हो। गुरु के पद को धारण करके कृष्ण ने क्या किया, उसे डांटा। पहले तीन चार श्लोक में सिर्फ डांटा है ना, शासन किया। गुरु का कार्य क्या है, शासन करना, तो शासन किया उसके ऊपर, तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी वो गलती है, तुम ऐसे मूर्ख हो, तुम जानना ही नहीं चाहते वास्तव में क्या है। तब विनम्र पर गुरु ने प्रश्न किया, जब विनम्रता पूर्वक प्रश्न करते हैं तब आपको गुरु बुद्धि देते हैं, अन्यथा अगर आप चैलेंज वे में करेंगे मैं सब कुछ जानता हूं तो नहीं मिलेगा। जैसे एक गिलास है, एक गिलास को यहां तक भर लीजिए, एक व्यक्ति के पास जाइए, प्रभु जी जूस मिलेगा? बोले प्रभु जी इसको फेंक कर आओ ना, पानी है, इसी में डाल दीजिए कैसे भी, कोई व्यक्ति नहीं देगा आपको। बोले तो मूर्ख है, पहले से गिलास में पानी भर के आया। तो जब तक हम अपने आप को खाली नहीं रखते स्थान, ये सोच कर नहीं आते हैं कि मुझे सीखना है, मुझे विनम्र होना है, शरणागत होना है, तब तक आपको कुछ ज्ञान नहीं मिल सकता। मैं छोटा था, मेरे स्कूल में एक बच्चा पढ़ता था, उत्तम नाम था, नाम बहुत बढ़िया था, उत्तम कार में एकदम कार्य जो था आदम लोगों का जमान था। टीचर जब बोलती थी बोल ए फॉर एप्पल, बोलता तू बोल ना मैं क्यों बोलू। ट्यूशन पढ़ने जाता था, ट्यूशन में ही बोलता था बोलो बेटे ए फॉर एप्पल, बोले तू बोल मैं क्यों बोलू, वैसी बोलता था बच्चा। तो वो सीख नहीं पाया, खूब प्रयास किया, माँ बाप ने खूब पिटाई भी की, टीचर ने पिटाई, नहीं सीख पाया, अनपढ़ रहा पूरा जीवन, अनपढ़ रहा, वही साइकिल की दुकान खोला हवा भरता है ना। बोला आप नहीं बोल सकते कि तू साइकिल बना तू हवा भर, करना तो आप ही को पड़ेगा, झुकना तो पड़ेगा। आप गुरु के सामने झुक जाएंगे तो आपका नाम सचमुच उत्तम होगा, आप गुरु के सामने नहीं झुकेंगे गारंटी अधम नाम पड़ेगा। तस्मात गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, गुरु के पास वो जाता है जिसको श्रेय की जानकारी लेनी है, उत्तम चीजें जाननी है, टॉप मोस्ट। गुरु के पास जाके सब्जी भाजी का रेट नहीं पूछते हैं, गुरु महाराज आलू का क्या रेट है, व्हाट इज दिस। जैसे एक बार चंगू मंगू नाम के दो चोर थे, क्या नाम था, बहुत फेमस नाम है, तो वो लोग चोरी करते थे, चोरी करते थे तो उनके पास गधा था, सारा चोरी का माल उस पर लाद देते थे और चले जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि बाइक में बड़ी डकैती हुई, खूब बड़ा चोरी हुआ, खूब माल फंस गया। तो जो गधा था ना वो चंगू मंगू का था, तो मंगू कहता है तो देख यार ये लकी गधा है, जब भी हम ले जाते हैं, अब गधा भी कैसे लकी हो सकता पता नहीं, तो ये लकी गधा हम जब चोरी के ले जाते हैं ना इसलिए चोरी हो जाती है क्योंकि ये गधा हमारे साथ रहता है। तो ऐसा करो तुम ये धन पूरा ले लो, चंगू को बोलते तुम ये धन पूरा ले लो आज, तुम अब चोरी का धंधा छोड़ दो और जाओ अच्छा जीवन जियो, है ना। चोर भी ना अंदर से अच्छा बनना चाहते हैं, इसलिए दो चोर चोरी करके आएंगे, बोले ना बराबर ईमानदारी से बांटना है, चोरी करिए गलत काम किए और क्या बोलते हैं ईमानदारी से बांटना। तो बोलते तू अच्छा जीवन जीना, एक गधे से तो मैं और भी कमा लूंगा, बहुत लकी है, आज इतना मिला तुमको कल मुझे डबल मिल सकता है, माय फेवरेट गधा। तो बोलता है कि चंगू बोलता है यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो मैं इतना ही धन लेके संतुष्ट क्यों हूं, बोलते नहीं तुम ये धन ले लो गधा मुझे दे दो। चंगू उसकी चाल में फंस जाता है, अब गधा उसको दे देते हैं, मंगू धन लेके चला जाता है, चंगू के पास ये धन आ जाता है और गधा जाता है, गधे को लेके जाता है, पहली चोरी में पकड़ा जाता है, इतना अनलकी गधा रहता है। हाँ उसकी जो पिटाई होती है, खूब मारते हैं उसको, कैसे जैसे बच बच के वापस आया था बेचारा, और उसका पूरा गुस्सा उस गधे पर रहता है, गधे को इतना मारता है इतना मारता है गधा मर जाता है। अब गधा मर जाता है तो बोले क्या करे, उसको गाड़ देता है, मार भी खाया रहता है और गधे के लिए गड्ढा भी खोद रहता, थक जाता है तो वही में सो जाता है। तो सो जाता तो कोई भिखारी समझ कर उसको पहले खाना वाना दे देता है। तो ऐसा कई दिन एक दो महीना बीत जाते हैं, उसको कहीं बैठे बैठे किसी स्थान पर कोई खाना दे रहा हो कोई क्या दे रहा है, उसकी दाढ़ी बढ़ जाती है, टूटता है स्नान स्नान करता है, दाढ़ी को अच्छे से बना लेता है, एक वस्त्र पहन लेता वहाँ बैठ जाता है। हर व्यक्ति आता था कोई ज्ञान की बातें पूछता था उसे, कोई दान देता था कोई पैसे देता था, ऐसा फेमस होने लगता है। तब उसको याद आता है अरे मंगू सचमुच बहुत अच्छा था, गधा कितना लकी है, फिर गधा नीचे है ना अभी गधे के ऊपर ही बैठा है, बोले गधा कितना लकी है। तो एक नंबर का ढोंगी गुरु बन जाता है, उससे लोग आके पूछते थे ढोंगी गुरु मिलेगा तो ढोंगी शिष्य होगा, सतगुरु होंगे तो सत शिष्य मिलेंगे, क्योंकि वो अपने ऐसे शिष्यों को पालेंगे नहीं रखेंगे नहीं सामने साथ। तो गुरु ढोंगी रहते हैं, कभी आध्यात्मिक जीवन पता तो नहीं रहता है, तो उससे पूछने लोग आते थे कि श्री श्री 1008 चंगू जी महाराज प्रातः स्मरणीय सदा वंदनीय। आप बताइए कि मेरी सास कब मरेगी? बोले जरूर मरेगी, जल्द ही मरेगी, आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद लेते हैं, अब सास के बिना कभी तो मरेगी, जब मर जाती तो खुश होता है। चंगू महाराज की जय हो, चंगू महाराज की जय हो। मेरी सास का देहांत हो गया, मैंने कहा था जरूर मरेगी। ये सब चल रहा है। मेरी भैंस कब दूध देगी? एक व्यक्ति आता पूछने के, जरूर देगी, चिंता मत करो, एक दिन ऐसा आएगा जरूर देगी, बस आपकी कृपा चाहिए महाराज। तो लोग ऐसे ही प्रश्न पूछना चाहते हैं जो भौतिक सुख दे, भौतिक चीजों के लिए गुरु के पास जाते हैं। हमारे घर में बच्चे का जन्म नहीं हो रहा जी, आशीर्वाद दे दो। अच्छा, बच्चा मान लीजिए जन्म हो गया राक्षस होगा, तो राक्षस जैसा होगा तो क्या होगा आपके घर में? पूरे वंश को डुबाने वाला होगा तो, है ना? औरंगजेब जैसा होगा तो, शिशुपाल जैसा होगा तो, आप क्या मांग रहे हैं फिर, है कि नहीं? सुख नहीं पाएगा, सोच रहे हैं हम सुख मांग रहे हैं, लेकिन क्या पता बच्चा ऐसा आएगा तो। जैसे एक धुंधली नाम की स्त्री थी, वो हमेशा बच्चा नहीं चाहती थी, बोली बच्चा जन्म होगा कौन 9 महीना रखेगा, कौन पालेगा, कितना कष्ट है, बच्चा नहीं चाहिए। पति परेशान हो जाते, संन्यास लेके चले जाते जंगल, संन्यास लेके जाते जंगल तो गुरु मिलते हैं उनको। गुरु बोलते हैं कि तुम दुखी दिखते हो, बोलते हैं कि मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए, मैं वंश चलाना चाहता हूँ, पर मेरे पति मानते नहीं है इसलिए मैंने संन्यास ले लिया। बोले ये संन्यास का विधि नहीं है, संन्यास में तो वैराग्य होना चाहिए। तो जाओ मैं तुम्हें एक फल देता हूँ, ये फल अपनी पत्नी को खिलाना, उसके बच्चे का जन्म होगा। तो फल लेके जाते हैं, पत्नी को देते, बोले खा लेना, तो बोलते यार फिर वापस आ गया, संन्यास लिया था। तो फल क्या करती, गाय को खिला देती है। गाय से एक संतान उत्पन्न होता है, लड़का उत्पन्न होता है, बहुत ही सुंदर बालक गाय से जन्म लेता है। तो मैंने सुना है कि किसी बिहार में या पता नहीं यूपी में कहीं एक गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया है, पुरुष बच्चा लड़का जन्म हुआ है, सच की बात। एनीवे, तो वो बच्चा जन्म होता है, उसके कान जो होते हैं गाय के समान होते हैं बड़े, इसके लिए उसका नाम पड़ता है गोकर्ण। क्या नाम पड़ता है? गोकर्ण। और वो फिर वो उदास हो जाता है, तो फिर वो उसके जीवन में तो बच्चे की उत्पत्ति थी लेकिन वो अच्छा बच्चा नहीं था उसके जीवन में, तो फिर वो जाता है बच्चे के लिए फिर से चाहता है, तो फिर बच्चे के लिए फल देता है, फिर वो बच्चा उत्पन्न होता है, तो धुंधली का बेटा धुंधकारी बनता है, बहुत ही खतरनाक, इतना खतरनाक कि सारे बच्चों को परेशान करता था। किसी बच्चों खेलेगा उसका हाथ पर बांध देगा, कुएं में डाल देगा, किसी घर में आग लगा देगा, किसी के बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूस देगा, ऐसा वो आतंक मचा दिया था। तो गांव वाले क्या करते हैं, उसको पकड़ के एक दिन मार डालते हैं, तो भूत बन जाता है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप अपने गुरु से कुछ भौतिक वस्तु मांगने गए हैं तो आपको जो मिलेगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। इसलिए गुरु से क्या मांगना चाहिए, आध्यात्मिक वस्तु, भौतिक वस्तु नहीं। जैसे कि हमारे गुरु महाराज के पास एक भक्त गया, बोले महाराज आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो सोचा कुछ आध्यात्मिक प्रश्न होगा, बोले महाराज आपके पहचान का कोई व्यक्ति है क्या कलकत्ता में, मुझे ट्रांसफर कराना है अपने जॉब। महाराज बोलते मैं आपको जॉब कंसल्टेंट लगता हूँ, अच्छा मैं आपको जॉब दिलवाने वाला हूँ, ट्रांसफर कराने लगता हूँ, कोई नेता लगता हूँ। आप सोच लीजिए मैथमेटिक्स के टीचर के पास आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछने जाएंगे, तो ये मूर्खता नहीं है? तो यही बात है कि आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक प्रश्न पूछने जाना चाहिए। और पूछने के लिए क्या चाहिए, विनम्रता, सेवा, तब जाके कुछ होगा। इसलिए गुरु को ही धारण करना फैशन नहीं है कि गुरु जी हमने, हमारे भी गुरु जी, हम भी गाड़ी के पीछे गुरु जी लिखते हैं, हम भी गाड़ी के पीछे जय गुरुदेव लिखते हैं, आम सेव पराजिता, है ना, हमारे गुरुदेव भी हैं। ये सब फैशन के लिए गुरु नहीं बनाना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप गुरु की सेवा नहीं कर सकते, गुरु की सेवा की भावना नहीं है, समर्पित भावना नहीं है, तो गुरु के बजाय कुत्ता पाल लेना चाहिए, कुत्ता आपकी आज्ञा का पालन करेगा। गुरु आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए नहीं है, आप गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए। अगर ये सोचते हैं कि मैं ऐसा गुरु धारण करूंगा जो मेरे इशारे पर कार्य करेगा तो उसे अच्छा कुत्ता पाल लीजिए, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। इसलिए ईशोपनिषद नामक ग्रंथ में बताया गया है, 108 उपनिषद उसमें मुख्य उपनिषद है ईशो उपनिषद, उसमें बताया गया है इस भौतिक संसार में ये शरीर जो है एक नाव के समान है, और ये भौतिक संसार क्या है, समुद्र के समान, भव सागर, भवाम्बुधि कहा गया, आम्बुधि मतलब सागर, भव सागर ये, और भव सागर से पार करने के लिए शरीर रूपी क्या एक नाव है, भगवान ने क्या दिया है, नाव दिया है। और जब इस नाव में बैठते हैं तो कि आप तैर के नहीं कर सकते पार, आप कितने भी अच्छे तैराक हो, वर्ल्ड चैंपियन हो, आपको आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आता हो कि आपने इंग्लिश चैनल को पार किया है, पर अब भव सागर को नहीं पार कर सकते, यहां से कि प्रशांत महासागर को पार नहीं, इंग्लिश चैनल तो एक डिस्टेंस है थोड़ा कम, इसको पार करने वाला भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आता है उनका, लेकिन इतने बड़े प्रशांत महासागर को पार नहीं कर सकते, तो भव सागर को कैसे पार कर सकते हैं, उसके लिए एक नाव चाहिए, वो नाव क्या है, शरीर, कौन सा शरीर, मनुष्य का, पशु का शरीर नहीं, मनुष्य का शरीर, पशु का शरीर तुलना किया गया है पत्थर के नाव के समान, पत्थर का नाव जैसे पानी में रखोगे तो क्या होगा, उड़ने लगेगा ना, डूब जाएगा, पत्थर का नाव तैरता नहीं है, तुरंत डूब जाएगा उसमें बैठ के साथ रखते साथ, तो इसलिए मनुष्य रूपी जो जो शरीर है नाव है वो क्या है, भव सागर को पार करने के लिए, पशु के शरीर नहीं कर सकते। और जब इसमें बैठते हैं हम लोग तो इसमें रास्ता दिखाने वाले कौन है, अब नाव भी मिल गया आपको, समुद्र में चढ़ भी गए, चप्पू भी आपके पास है, रास्ता बताने लोग, आपको पता है भटक जाता है व्यक्ति, दूर दूर तक जमीन नहीं दिखती, गलत दिशा में चला गया, पता चला टापू में चल गया, वहां पर आपको मिल गए खूब सारे पशु है ना, सब वो छुरी काटा लेके बैठे कब आएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपको मार्गदर्शन भी आवश्यक है। तो गुरु कर्णधार हम बताएंगे, कर्णधार, कर्णधार मतलब जो रास्ता मार्ग दिखाने वाले हैं वो गुरु हैं, कैप्टन, आपके बोर्ड के आपके नाव के कैप्टन होते हैं गुरु, वो सामने बैठते हैं और दिशा बताते हैं, इस तरफ है गोलोक धाम, इस तरफ चप्पू चलाओ, शिष्य को आदेश देते हैं। और जो फेवरेबल विंड्स हैं, जो अनुकूल हवाएं हैं, कि अनुकूल हवा भी चाहिए, प्रतिकूल हवाएं जो होती है तो आपका मार्ग कठिन हो जाता है, तो अनुकूल हवाएं जो है वो शास्त्र बताए गए हैं, क्या बताए गए हैं, शास्त्र, अनुकूल हवाएं। और मार्गदर्शन मिल गया, अनुकूल हवा भी है, नाव भी है, आप भी हैं, बहुत सुंदर वातावरण भी है, लेकिन चप्पू नहीं है, नाव चलेगी, कितना हाथ से चलाएंगे नहीं, तो चप्पू को बताया गया गुरु का इंस्ट्रक्शन, गुरु का आदेश, गुरु के आदेश को जब प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, चप्पू के समान चलाते हैं उस दिशा में, जिस दिशा में गुरु बता रहे हैं, तो अपने आप हम लोग भव सागर को पार कर जाते हैं। तो इसीलिए हर व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता है, जो लोग यहां दीक्षित नहीं है वो सोच रहे हैं हमें आवश्यकता नहीं है, तो मैं आपको शास्त्रों से बताता हूं कितनी आवश्यकता है, सुनिए। सनातन गोस्वामी बताते हैं हरिभक्ति विलास 4.366, बताया गया है अवैष्णव ग्रहित दिष्टेन मंत्रेन निर्णयम व्रजेत पुंसः च विदिना ग्रहित वैष्णवात् गुरु। One who receives this mantra from guru who is not Vaishnav is destined to be go hell. जो वैष्णव गुरु से दीक्षा नहीं लेता है वो नरक जाना उसका निश्चित है, क्योंकि हम इतने पाप किए हैं कि उसके उसको क्षय नहीं कर सकते, उसको बंद नहीं कर सकते, तो गुरु एक झटके में खत्म कर सकते हैं अगर उनकी कृपा हो जाए तो, एक झटके में, एक सेकंड में आपके सारे समस्त पाप नष्ट कर सकते हैं, आपको नरक जाने से बचा सकते हैं। शास्त्र में यहां तक बताया गया है कि जो व्यक्ति गुरु से दीक्षा ले चुका है इस जन्म वो नरक नहीं जाएगा, अपराध ना करे तो वो नरक नहीं जाएगा, गुरु उसको बचा लेते हैं। Such a person should approach a Vaishnav guru and again receive the mantra according to direction of the scriptures. आगे बोलते हैं, यहाँ बताया गया है तयोर वस्त्र वसेन ज्ञायन्ते सुभय बहु गुरुता शिष्यात् चेति नयन एतवेति निश्चय। बोल रहे हैं कि गुरु और शिष्य को एक साल एक साथ रहना चाहिए, इस तरह एक दूसरे को समझ जाते हैं, तब जाकर वो क्या करते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं। मंत्र मुक्तावली में बताया गया है हरि भक्ति विलास 1.74 में। तो गुरु से दीक्षा लेना आवश्यक है, तो बोले मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है तो वो प्रगति नहीं कर सकता। कई ऐसे प्रश्न आपको उठेंगे कि कई ऐसी घटनाएं दिखती हैं, रोज कुछ घटनाएं ऐसी मिली है जीवन में जिसमें देखा गया कि गुरु की आवश्यकता नहीं थी लेकिन भगवान की प्राप्ति कर ली। जैसे मीराबाई है, कई ऐसे लोग हैं। लेकिन याद रखिए हर व्यक्ति मीराबाई नहीं है, हर नियम में एक दो अपवाद हो सकते हैं पर उसको जनरलाइज नहीं कर सकता, वो सर्व सामान्य जनता के लिए नहीं है, लागू नहीं होता है ना। क्या हम मीराबाई के पिछले जन्म जानते हो क्या भक्त है कि नहीं भक्त है? नहीं जानते। इसलिए एक दो उदाहरण आप देते हैं कि उन्होंने दीक्षा नहीं ली और भगवत धाम चले गए तो ये उदाहरण नहीं माना जाता है। जब संख्या में ज्यादा हो उदाहरण तब माना जा सकता है, ये भी कंडीशन है। जनसाधारण में ये बात नहीं दिखी जाती है। जैसा कि मनुष्य शरीर में ही भगवत धाम जाना निश्चित है, ये कभी कभी देखा गया है चैतन्य महाप्रभु ने कुत्ते को उठाया था, कुत्ता हाथ खड़ा करके हरे कृष्ण मंत्र बोला और वो लोग धाम चला गया। तो बोले कुत्ता चला गया प्रभु जी। मत्स्य अवतार में मत्स्य भगवान जब आए थे तो बड़े से सागर में जब उन्होंने स्पर्श किया कई मछलियों को, जो मछलियां मर गई सब भगवत धाम चले गए। लेकिन ये सब अपवाद है, अपवाद का मतलब एक्सेप्शंस होते हैं, ऐसे हजारों अरबों खरबों में केसेस हो जाते हैं। भूत की योनि में धुंधकारी जो था भागवतम सुन के चला गया, लेकिन हम सब न धुंधकारी हैं, न उस समय के मछली हैं और न ही, तो मीरा की जैसे स्तर नहीं हमारा। तो जो हमारा स्तर नहीं है तो हमें उस चीज का प्रयास नहीं करना चाहिए। साधारण व्यक्ति को साधारण कार्य करना चाहिए, ठीक है, साधारण नियम का अपनाना चाहिए, तब वो जाकर महान बनेगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, स्विफ्ट गाड़ी है, मान लीजिए आपने कभी चलाया नहीं, उसे बैठ करके सड़क पे ले आते तो एक्सीडेंट गारंटेड है, एक्सपर्ट नहीं है, पहले सीखिए, एक्सपर्ट बनिए तब वो कार्य कीजिए। तो इस शास्त्रों के हिसाब से बताया गया, इसलिए गुरु को धारण करना आवश्यक है भगवत धाम अगर जाना है तो। कोई बोल सकता है जी अभी थोड़ा लेट हो जाए, एक दो साल चार साल बाद धारण कर लें तो क्या दिक्कत है, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो देखिए जितना आप लेट करेंगे उतने जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वो जा रहे हैं धराधाम से अपनी लीला समाप्त करके, है ना। प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के सेनापति हैं, उनके शिष्य से अगर आप दीक्षा लेते हैं तो आप सौभाग्यशाली ज्यादा होंगे। तो उनके शिष्य अगर इस धराधाम को छोड़ दें, अभी 70 साल के सब आयु के लगभग होंगे सारे। प्रभुपाद जी 1966 में ये आंदोलन प्रारंभ किए थे, लगभग वो 20-25 साल के लोग आए थे। 66 से 16 मांग ले 2 साल से बाद तो वैसे 50 वर्ष हो जाते हैं और 20 साल के लोग थे तो 70 साल के लगभग सभी लोग होंगे। तो सब लोग शरीर त्याग कर चले जाएंगे तब आप लेंगे तो आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। इसलिए हमें जल्दी से जल्द इस कार्य में बढ़ना पड़ेगा दीक्षा लेने के लिए। तो दीक्षा लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? 4 नियम का पालन करना। 4 नियम कौन से होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कौन से होते हैं 4 नियम? पहला नियम क्या है? मांसाहार नहीं करना, जिसमें प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, है ना। अंडा मांस मछली मशरूम भी नहीं खाना चाहिए। मशरूम भी बताया गया है कि आधा सेमी नॉन वेज है, फंगस है। तो बोले गुरु जी क्या दिक्कत है इसमें? हम ये पूछते हैं नहीं खाओगे तो क्या दिक्कत है, मर जाओगे? मशरूम को छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? मशरूम में कौन सा फूल खिले हैं, है ना, कि मशरूम के बिना हम रह नहीं सकते। वैसे भी जनरली लोग मशरूम रोज भी नहीं खाते, कभी यदा कदा खाते हैं, तो यदा कदा को छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? बोलेंगे प्याज लहसुन है, प्याज लहसुन के बिना जीवित कैसे रहेंगे? 500 रुपये किलो होगा तो जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अगर प्याज लहसुन का रेट 500 रुपये किलो हो जाएगा अपने छूट जाती है, पीछे छूटा था लोग 100-150 रुपये किलो हो गया था, छूट गया था, प्राण नहीं छूटते उसे। प्याज लहसुन तमोगुण बताया गया है। सतयुग में घटना है, एक बार यज्ञ हो रहा था तो यज्ञ में एक स्त्री थी, वो याज्ञिक स्त्री जो होती है जो बैठा जाता है यजमान के रूप में, तो उसको गर्भवती थी, उसको कुछ खाने की इच्छा हुई तो उन्होंने क्या किया, अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, सॉरी गोम में यज्ञ कर रहे थे, बूढ़ी गाय को काट कर यज्ञ में डाला जाता है, उसको नया जवान शरीर दिया जाता है, ऐसा यज्ञ ब्राह्मण करते थे। सतयुग में, अभी तो पॉसिबल नहीं है। तो उसने क्या किया, भूख लगी थी, उसने क्या किया, गाय का ताजा मांस था, उसे खुर को छुपा लिया खाने के लिए, मैं उसको खाऊंगी। तो जब गाय उससे बाहर निकली तो खंडित थी, क्योंकि गाय डाला नहीं, पूरा तो गाय निकलेगी नहीं, जो जितना डाला उतनी निकलेगी, यानी गाय का खुर नहीं था। तो वो क्रोधित हो गए ब्राह्मण और खड़े हो गए, बोले इस यज्ञ की संपन्न करने में कुछ गड़बड़ी हुई है, किसने मांस छुपाया है? तो उसने बता दिया, उसने खुर को निकाला और फेंक दिया दो टुकड़े करके, तो एक प्याज बना और एक लहसुन। इसलिए दोनों को जलाने से एक से बदबू आती है, जैसे मांस जलाने से बदबू आता है, और एक को काटने से आंसू गिरते हैं, शास्त्र बताया गया। कोई बोले भाई हम शास्त्र नहीं मानते, कोई बात नहीं, मेडिकल साइंस के हिसाब से बताया जाता है, अगर आप प्याज और लहसुन खाते हैं तो आपके जीवन में उत्तेजना बढ़ती है। बताते हैं काम भावना सबसे अधिक बढ़ती है प्याज और लहसुन खाने से। ये तमोगुण के वस्तुएं हैं, तमोगुण को खाएंगे तो तमोगुण बढ़ेगा। आपके जीवन में सत्वगुण बढ़ाना है, दूध दही फल अनाज ये सब लीजिए। रजोगुण बढ़ाना है, मसालेदार खूब मिर्ची डालिए, चिली सॉस, अब देखिए आपके जीवन में एकदम रजोगुण बढ़ जाएगा। तमोगुण बढ़ाना है, मांस खाइए, मछली खाइए, अंडा खाइए, झंडा खाइए, सब खाइए, क्या होगा आपके जीवन तमोगुण बढ़ जाएगा। प्याज लहसुन सुबह कोई बोले गुरु जी दवाई है, सो खाने से तो हमारे कई प्रकार के कष्ट मिटते हैं, बोलते हैं प्याज लहसुन को सरसों तेल में गर्म करो खांसी हट जाती है, ठीक है बहुत अच्छी बात है। क्रोसिन से क्या होता है, बुखार चला जाता है, तो क्रोसिन का सब्जी बना के नहीं खाते हम। तो पति पूछेगा आज क्या खाओ जी, आज क्रोसिन का टैबलेट का फ्राई कर दीजिए, कोई बना दीजिए एक प्लेट, हम खाते हैं क्या? अगर दवाई है तो उसको सब्जी के रूप में क्यों खाते हैं? तो क्या हम दवाई के रूप में खा सकते हैं? दवाई के अपने ऑप्शन भी होते हैं, जैसे बताया जाता है जिसको अस्थमा है उसको बंदर का मांस खाना चाहिए, बंदर का कलेजा उसको फ्राई करके खाएंगे उसको अस्थमा की बीमारी ठीक हो जाएगी, खाइए फिर दवाई है ना। शरीर जल लाता है तो बंदर की चर्बी को निकाल कर लगाएंगे तो शरीर का जो चला हुआ भाग वो स्वच्छ हो जाता है, अच्छा हो जाता है। अच्छा बंदर को दौड़ाएंगे मारने के लिए हम लोग? बोले नहीं, इस पर ये दूसरा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धनी हो तो अपने ही बच्चे को आप बलि दे देंगे काली जी के सामने तो आप धनी हो जाएंगे, क्या करेंगे आप? और दूसरा ऑप्शन ढूंढ दें, जिस वस्तु से हमें ही नुकसान होने वाला है हम उस वस्तु को त्याग देते हैं, बोलते इसका कोई ऑप्शन है क्या? बहुत सारा ऑप्शन है, आप जाइए आयुर्वेद में, इतने ऑप्शन है, इतने ऑप्शन पूछिए मत आपको खांसी सर्दी दूर करने के लिए। अदरक है, शहद है, सीतोबलादी चूर्ण है, सीतोबलादी चूर्ण को शहद के साथ लीजिए, आपका गला एकदम सही हो जाएगा। गर्म पानी पीजिए, स्वालिन खाइए, हम दर्द का स्वालिन, गला ठीक हो जाए। जरूरी नहीं है कि प्याज लहसुन खाना। मांसाहार को बोले प्रभु जी मांस खाने से तो शरीर बहुत जरूर नाइट्रोजन की जरूरत होती है शरीर में, अगर हम तो उभयचारी हैं, उभयभक्षी हैं, सब खाते हैं, अन्न भी खाते हैं, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी हैं, ऐसा हमने साइंस में पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है आपने पढ़ा है, आपको एक नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा आपने पढ़ा है, लेकिन बहुत छोटा सा लॉजिक है। ये मुझे बताइए कि क्या एक व्यक्ति एक मनुष्य पूरे जीवन काल सिर्फ मांस खा के जीवित रह सकता है? नहीं, ठीक 2 साल बाद वो मर जाएगा, अगर 2 साल तक लगातार सिर्फ मांस खाता तो मर जाएगा, नाइट्रोजन शरीर में इतना हो जाएगा कि मर जाएगा। इसलिए खाने के साथ उसको चावल खाना पड़ता, दाल पीना पड़ता, खाना पड़ता, लेकिन सीपू के जीवन काल आप शाकाहारी रखे आप जीवित रह सकते हैं, इससे पता चलता है आप शाकाहारी हैं। और भी कई साइंटिफिक रीजन है, पीएच वैल्यू जो हमारा पेट में एसिड होता है उसका वैल्यू जो होता है 3 और 4 होता है, 6 जो मांसाहारी जो जीवात्मा उस पर 1 होता है, यानी उसके अंदर जो अम्ल होता है जो एसिड होता है मांस को आसानी से गला सकता है, हम नहीं गला सकते, इसलिए वो निगलता है, काटता और निगल लाता है, उसको चबाने वाले दांत नहीं होते ज्यादा, शेर के कम होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, नुकीला दांत होते हैं काटने के लिए, हमारे पास भी बोलते हमारे पास भी होते हैं, हमारे नुकीले इतने नहीं होते, हम किसी का मांस काट कर नहीं खा सकते। फिर जो मांसाहारी जीवात्मा होते हैं वो क्या करते हैं, जीभ से पानी पीते हैं, अब देखा है और हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा चल रहे हरे कृष्णा। तो हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं कई चीजों की, जीभ से पानी पीते हैं, और जो शाकाहारी जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, मुंह से पानी पीते हैं, गाय बैल बकरी और सब मुंह पानी, देखना आप पानी ला कर रखिए किसी बर्तन में तो पूरा मुंह डुबा देंगे और खींचेंगे पानी को। लेकिन एक बिल्ली को, एक कुत्ते को, एक शेर को पानी, शेर को मत पिलाना खा जाएगा आपको, तो बिल्ली को पानी पिलाएंगे तो चाटती है ऐसे, वो लोग सांस लेते हैं तो जीभ, कभी कभी जीभ निकाल के सांस लेते हैं, कुत्ता निकालता है, शेर निकालता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके लक्षण अलग है। मांसाहारी जीव जो होते हैं अपने रोम कूपों से सांस नहीं ले पाते, उनको तकलीफ होती है, पर शाकाहारी जीव जो होते हैं अपने रोम कूपों से लेते हैं। शाकाहारी जीवों के दांत जो होते हैं फ्लैट होते हैं, जेबरा गाय भैंस घोड़ा, तो इनके जब देखेंगे इनके जो जबड़े जो दांत होते हैं क्या फ्लैट होते हैं ताकि चबाया जा सके, है ना। तो ये साइंटिफिक रीजन भी है और ये शास्त्रों में दिया हुआ। तो मांसाहार नहीं करना है, फिर इसका होता है जुआ नहीं खेलना। जुआ खेलने से क्या होता है, हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और हमारे मन का जो जो चेतना है वो दूषित हो जाता है, इसलिए जुआ खेलने वाला व्यक्ति शांत नहीं होता है, हमेशा उद्विग्न रहता है, परेशान रहता है। लेकिन आप देखते हैं कि जो व्यक्ति जुआ नहीं खेलते हैं इस मामले में कब से उद्विग्न नहीं होते, ठीक है, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है नशा पान नहीं करना, शराब बीड़ी सिगरेट तंबाकू गांजा भांग अफीम ये सब नहीं खाना, चाय भी नहीं पीना चाहिए, चाय में निकोटिन होता है, कॉफ़ी में कैफीन होता है, जो आदत आपकी बिगाड़ देता है। आप महसूस करेंगे कई सालों के बाद जब चाय छोड़ना चाहते हैं तो बोलते हैं कमबख्त छूटती नहीं है ना, क्योंकि नशा है उसके अंदर। फिर वही बात है कि चाय के बिना हम रह सकते हैं, कृष्ण भगवान प्रभु ने प्रूव करके दिखा दिया। वैसे भी आप हर्बल टी जी पीए, हर्बल आते हैं बहुत सुंदर सुंदर, गोकुल टी मिलता है मंदिर में, अब वहां पर ऊपर रख दीजिए, यहाँ पर आप गोकुल टी पीजिए, चार्ज नहीं है तो आपको अपने आप अच्छा लगने लगेगा, कोई अंतर नहीं है। और घर में बनाइए, घर में भी कई लोग बना लेते हैं, कई माताएं घर में बहुत अच्छा गेहूं और गुड़ से कॉफी का टेस्ट का चीज बनाती हैं, है ना, गेहूं और उसको पीस देती हैं गुड़ के साथ तो कॉफी जैसे टेस्ट आता है। अभी द्वारका मंदिर में एक माता जी ने कॉफी के समान कुछ चीज़ बनाई है जो गेहूं से बनता है, गेहूं को फ्राई करते हैं, तो एक महीने में कंज्यूम कर सकते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स में आते हैं, तो वो आप भी बना सकते हो घर पर। तो बोले प्रभु जी चाय छूटती नहीं है, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर अगर बोल देगा कि अगर चाय पियोगे तो मर जाओगे, आप देखिए कैसे छोड़ देंगे, नहीं जी जल लगा कर छोड़ देंगे। तो यही बात है, तो नशा पान भी नहीं करना, प्याज लहसुन नहीं खाना, चॉकलेट भी नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट में भी कैफीन होता है ना, कॉफी का होता है, कोकोवा होता है उसमें। कोई बोलेगा प्रभु जी तंबाकू क्यों नहीं खाना चाहिए, तंबाकू तो जड़ी बूटी है, ऐसा भी बोलते हैं, तंबाकू तो पौधा है ना, उसको खाने में क्या दिक्कत, और घुमाती कैसे तंबाकू जो है वो पौधा आता है, ये बीड़ी होता है, बीड़ी का जो कवर होता है वो तेंदू के पत्ते से बनता है, पेड़ से है, इसको क्यों नहीं खाना चाहिए। तो ठीक है धतूरा भी खाओ, धतूरा भी पेड़ में ही उगता है ना। तो हम हर चीज नहीं खाते हैं, भगवान ने वस्तुएं बनाई है पर सब चीजें खाने के लिए नहीं बनाई है, जो वस्तु खाने के लिए वही खाना चाहिए, कोई जहर थोड़ी खा लेता जाकर, जहर के भी फल होते हैं, कई जहरीले फल होते हैं, हम उसको नहीं खाते हैं। तो जो हमारा नुकसान करने वाली चीज है उसको त्याग देना चाहिए, जो हमारा फायदे करने वाले उसको ग्रहण करना चाहिए। और अंतिम में चौथा है पर पुरुष पर स्त्री गमन करना, है ना। इसलिए विवाहित होकर स्त्री के साथ और पुरुष के साथ ही गमन करना चाहिए, अन्यथा नहीं। ये चारों नियम का पालन करेंगे एक वर्ष तक तो आप दीक्षा के योग्य हो जाएंगे। और 16 माला हरे कृष्ण मंत्र का प्रतिदिन जप करना, जब ये करते हैं एक साल तक तब दीक्षा के योग्य होते हैं, शास्त्र बताया गया हरिभक्ति विलास के हिसाब से। फिर गुरु से आपका इंटरव्यू होता है, गुरु आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप दीक्षा के योग्य हैं, तो उसके बाद आपकी दीक्षा हो जाती है। दीक्षा समारोह में कई भक्तों के यहाँ दीक्षा हुई है हाल ही में, तो उन लोगों को काफी फायदा हुआ है और महसूस कर रहे हैं कि वो प्रगति भी कर रहे हैं, तो ये लक्ष्य है। तो हमें दीक्षा लेने के लिए तैयारी करना चाहिए। तो जो लोग सोचते हैं कि हमें दीक्षा लेनी चाहिए, हम सिंसियर होना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर जो दीक्षित भक्त हैं उनसे आप गाइडेंस लीजिए। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि जो 16 माला करते हैं, चार नियम का पालन कर रहे हैं, पर दीक्षा के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उन लोग भी संपर्क कर सकते हैं। सनातन गोलक आनंदपुर है, सेंटर के इंचार्ज, उनसे पूछ सकते हैं। और कुछ भक्त लोग जो कि एक साल हो गया, 6 महीने से ज़्यादा हो गया है 16 माला का जप कर रहे हैं और चार नियमों का पालन कर रहे हैं कठोरता से, तो वो मुझसे आकर गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र भी ले सकते हैं। लेकिन पहले संपर्क करना पड़ेगा अपने काउंसलर से या ग्रुप लीडर से या सनातन गोलक आनंदपुर से संपर्क कीजिए, क्योंकि गुरु के प्रणाम मंत्र जब जप करते हैं तो आप सुरक्षित हो जाते हैं भक्ति में। लेकिन 6 महीना 16 माला का जप और 4 नियम का पालन कर रहे हैं तो ठीक है। तो आप दीक्षा लेने के लिए सोचिए, सोचना पड़ेगा, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये आवश्यकता है, नेसेसिटी है, ठीक है। गुरु धारण कीजिए, गुरु की कृपा प्राप्त कीजिए, भगवान के बारे में जानिए। और इस भौतिक संसार जो बताया गया एक टॉयलेट के समान है, यहाँ पर अपने सारे मल यानी अनर्थों को त्याग कर चले जाइए यहाँ से। भगवान हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, अनुभव करती है आत्मा के अंदर चेतना है, शरीर दुख सुख नहीं कर सकता। इस डब्बे को मैं कितना भी दूर से फेंक दूंगा उसके अंदर कोई अनुभव नहीं होगा। लेकिन चूंकि आत्मा शरीर नहीं है, लेकिन शरीर को कष्ट होता है तो उसको अनुभव करती है, बस दुख सुख उसको उसको दर्द नहीं होता है, याद रखिए, उसको लगता है कि मुझे दर्द हो रहा है। इसलिए देखते हैं कि जब कोई ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, ध्यान मुद्रा में करते हैं, और जब आत्मा से वो शरीर अलग हो जाता है तो शरीर में दीमक भी पड़ जाता है पर उसे कष्ट नहीं होता है। तो ये आत्म साक्षात्कार होने के बाद ही कष्ट नहीं होगा, लेकिन हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं शरीर से। जैसे मैं मान लीजिए, मैंने कई बार बताया कि मैं इस करताल को जोर से पकड़े रहूँ खूब तेजी से और आप उसको खींचते हो तो मेरे हाथ में कष्ट होगा, लेकिन मैं अगर छोड़ दूंगा ऐसे, अब जब खींचोगे छोड़ दूंगा तो मुझे कष्ट नहीं होगा। वैसे ही जो शरीर को जकड़े हुए रहती, जो आत्मा पकड़े हुए रहती है, सोचती है कि मैं ही शरीर हूँ, तो शरीर को जब अलग किया जाता है तो कष्ट होता है, या शरीर में जो कष्ट आता है उसका अनुभव करता है। इसलिए जो उन्नत भक्त है उनके जीवन में कष्ट आता है तो वो जानते हैं कि शरीर को कष्ट है, मुझे कष्ट नहीं है, तो उसका अनुभव नहीं होता है। इसलिए जो उन्नत आत्माएं होती हैं उनके जीवन में दुख आता है तो उसको दुख का अनुभव नहीं होता है। शीतोष्ण सुख दुखदा आदाम उपायनो ताम तितिक्षुपा भारत, वो सहन कर लेता है। कृष्ण बोल रहे अर्जुन को कि जो स्थित प्रज्ञ स्थिति में होता है तो क्या करता है, दुख और सुख को सहन कर लेता है। ऐसा नहीं कि उसके शरीर विकार नहीं होगा, किसी उन्नत व्यक्ति के शरीर में काटेंगे तो ब्लड नहीं निकले, निकलेगा पर उसको दुख नहीं होगा। वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। नैनम चिदंती शस्त्राणी नैनम दति पावक, शरीर को मारा जा सकता पर आत्मा को मारा जा नहीं सकता। तो ये अनुभव की बात है, आत्मा शरीर में अंतर। और किसी का प्रश्न? रविदास के गुरु कौन थे? इसलिए परंपरा में नहीं थे, गुरु थे पर दीक्षा नहीं हुई थी, शिक्षा लिया था। मीरा
भाई ने
हाँ, उन्होंने बता, कोई भी बोलते हैं कि वो जीव गोस्वामी से मिली थी, उनसे भी शिक्षा ली थी, शिक्षा गुरु सकते। मैंने दीक्षा गुरु की पॉलिटिक्स में बताया था ये बात कि उन्होंने दीक्षा किसी से नहीं ली थी। कोई अगर ये उदाहरण देता है तो उसके लिए ये भी फिट हो जाता है कि शिक्षा गुरु तो चाहिए चाहिए, है ना। शिक्षा गुरु ठीक नहीं मिलिया, शिक्षा गुरु तो कंपल्सन है। कोई बोले मैं शिक्षा गुरु नहीं चाहता तो फिर बड़े कैसे हुए बिना शिक्षा के, है ना। बिना शिक्षा के बड़े नहीं हुए, ABCD सिखाया गया, पढ़ना लिखना उठना खाना बैठना कपड़े पहनना, कोई ना कोई तो सिखाया। और किसी का प्रश्न? दूध, अंडा, हाँ। इन्होंने किसका प्रश्न बहुत बढ़िया है कि दूध और अंडे में दोनों तो एक जीवात्मा से आ रहा है। तो अंडे के बारे में बता दूं, थोड़ा सा बुरा लगेगा सुनकर, लेकिन ये सत्य है और शास्त्र में नहीं साइंस में बताया गया। जैसे स्त्री के गर्भाशय होता है, स्त्री के अंदर गर्भाशय होता है, उसको अंडाशय भी कहते हैं। अंडाशय में जब पुरुष का शुक्राणु जब जाता है जीवात्मा के साथ तो उसमें जीवन आता है, वो अंडाशय जो होता है भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, 6 महीने 7 महीने में पूर्ण विकसित हो जाता है, फिर 8वें 9वें महीने में जन्म हो जाता है। लेकिन अगर उसमें शुक्राणु नहीं जाएगा तो वो अंडाशय क्या होता है, गलता है, गलकर प्रत्येक मास में वो स्त्री के शरीर से प्रभावित होता है, बाहर निकल जाता है, इसको मासिक धर्म कहा जाता है, ठीक है। वैसे ही मुर्गी के शरीर में होता है, मुर्गी के शरीर में जब मुर्गे के शरीर का शुक्राणु नहीं जाता है तो वो अंडे के रूप में निकलता है, यानी बोल सकते हैं वो मुर्गी का मासिक धर्म है। उसको लोग पका के खाते हैं, वो क्या बोलते हैं, शाकाहारी है, शुद्ध है, शाकाहारी है, वेजिटेरियन एग, हेल विथ इट, नरक है। आप सोचिए कि मुर्गी का मासिक धर्म जो व्यक्ति खा रहा क्या खा रहा है, वो अलग है। बोलते ना जो ऐसे अंडा जो बड़ा नहीं होता उसमें जीवन नहीं होता, उसकी बात बता रहा था मैं। बाकी जिसमें चूजा निकलता हो तो है ही, हो तो उसको मार ही रहे जीव हत्या। पर दूध गाय के शरीर से निकलने वाले प्रत्येक वस्तु दिव्य होता है, गोबर मूत्र झरण दूध सब इतना पवित्र होता है कि उसको अमृत बोला गया है, इसलिए गोरस कहा गया उसको, अमृत तुल्य बताया गया। इस संसार में, इस भौतिक संसार में कोई अमृत है तो गाय का दूध है, जबकि ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे लोग बोलते हैं गाय का दूध की बात तो छोड़ ही दीजिए, गाय के शरीर से मूत्र निकलने वाले लोग पीते हैं, है ना, उसको चार छिड़क दिया जाता है उस स्थान पे 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, गोबर को लीप दिया जाता है उस स्थान को पवित्र माना जाता है। नासा ने यह प्रूव करके दिखाया है कि गाय के गोबर में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं, जब वो हो सकते हैं तो दूध में क्यों हो सकता है। और दूध में इतने पोषक तत्व हैं जो शरीर को सुरक्षा देते हैं, सत्वगुण बढ़ाते हैं, इसलिए बताया गया सेकंड कैटेगरी का जो सत्वगुण का चीज है वो दूध है। फर्स्ट कैटेगरी का जो फल अपने आप गिरता है पेड़ से वो है, क्योंकि उसमें किसी को कष्ट नहीं दिया गया। गाय, एक गाय इतना दूध देती है कि उसका बच्चा अगर पूरा पी ले तो 10 से मर जाएगा। एक्सेस दूध देती है गाय, किसके लिए देती है, मनुष्य के लिए, क्योंकि अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है और एक गाय है तो आपको कहीं मेहनत करने की जरूरत नहीं है, किसी फैक्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, खेती कीजिए, अन्न उपजाइए, अन्न बचाइए अगली बार खेती करने के लिए, बाकी अन्न को खाइए, गाय के दूध से बढ़िया खीर बनाइए और खाइए, यम्मी यम्मी, ठीक। बहुत सरल है जीवन, ये फैक्ट्री बिजनेस मोबाइल कंपनीज की जरूरत नहीं है। प्रभा जी बोलते हैं कि अगर जब अन्न उपजना बंद हो जाएगा इस भौतिक संसार में, जब गाय नहीं होगी क्या नट बोल्ट्स खाओगे, क्या खाओगे, सोच के देखिए। खेती हमें से कोई नहीं करना चाहता है, अन्न सब खाना चाहते हैं, कितना चंबे वाली बात है ना। तो इसलिए दूध जो है वो तो आवश्यकता है हमारे शरीर की, बताया जाए कि इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है दूध का, कि दूध नहीं है तो कुछ और पी सकते हो। हाँ, कोई व्यक्ति दूध लेके भी जीवित रह सकता है पूरे जीवन का, ऐसा है, इतना पोषक तत्व होता है, पर अंडे से नहीं रह सकता। अंडे खाओगे तो यमराज को तो पता ही है तो किस प्रकार का अंडा है, शाकाहारी है कि मांसाहारी अंडा है, है ना। उसके उसके बाद जो डंडा है ना यमराज का, उसको तो एक ही चीज पता है कि जो खाएगा उसको डंडे पड़ने हैं। और किसी का प्रश्न? हाँ, सच होते हैं, मिलना चाहते तो मिला सकते हैं। भूत प्रेत एक योनि है, 84 लाख योनियों में एक योनि है, जो मनुष्य 4 लाख मनुष्य योनि उसके अंतर्गत आती है भूत प्रेत योनि। उसको, लेकिन ग्रॉस शरीर नहीं मिलता उसको, सटल बॉडी होता है, तो वो उसको एक ग्रॉस शरीर चाहिए होता है, यानी स्थूल शरीर चाहिए होता है, दीवार या किसी व्यक्ति के अंदर, किसी वस्तु के अंदर जाते हैं। वो भी तीन कैटेगरी होते हैं, एक न्यूट्रल होते हैं जो किसी कुछ नहीं करते हैं, बस तड़पते रहते हैं बेचारे, एक अच्छे होते हैं कभी कभी सहायता करते हैं, एक बुरे होते हैं जो कभी कभी परेशान करते हैं, तीन होते हैं। और ब्रह्म राक्षस जो होते हैं उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ब्रह्म राक्षस सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, पर जैसे एक आत्मा छोटी होकर पूरे शरीर को चला सकती है, वैसे ब्रह्म राक्षस पूरे शरीर को परेशान कर सकता है। पर जो कंठी माला धारण करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, उनको भूत प्रेत 4 मील तक दिखते भी नहीं, आते भी नहीं, ठीक है। किसी भूत के पास आप जाकर कंठी माला निकाल के देख ले, है ना। कई लोगों ने दर्शन भी किए होंगे भूतों के, भागवत गीता में भगवान बोलते हैं ना, जो भूतों की पूजा करते हैं भूत लोग जाते हैं, है ना, और जो पितरों की पूजा करते हैं पितर लोग जाते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं देवता लोग जाते हैं, पर जो मेरी पूजा करते हैं मेरे लोग जाते हैं। इसका मतलब भूत होते हैं, नहीं तो भूतों की पूजा वाली बात क्यों बोलते भगवान, शास्त्र प्रमाण, ठीक है। भूत को जानने का क्या कर रहे हैं, वैसे बताते हैं कि भूत के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे तो जल्दी आते हैं कि हमारी बार में गुणगान हो रहा है, आइए आइए चलो मिलते हैं। क्या जोर से बोलिए, किसी के अंदर आवेश आ जाता है। वो बताते हैं कि जो दुर्गा जी की जो पूजा है वो सत्वगुणी नहीं बताई गई है, है ना, वो तमोगुणी पूजा बताई जाती है। तो तमोगुण में जब आप उपासना करते हैं तो कभी जीवात्मा या कोई आवेश आपके अंदर प्रभावित हो जाता है, तो अच्छा नहीं बताया गया। किसमें, हाँ, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम से होते हैं भूत प्रेत, भक्ति करेंगे कुछ नहीं होगा। प्रभुपाद जी एक बिल्डिंग में घुसे थे पहली बार, तो वहां पर किसी व्यक्ति ने बताया इसके अंदर भूत है जो परेशान करता है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ठीक है मैं भूत से डरता नहीं हूँ। प्रभुपाद जी उसके अंदर गए और अपना ग्रंथ लिख रहे थे, तो ऐसे एक हाथ आता हुआ दिखा। आपने अभय चरण सिंह देखा है, उसमें है प्रभुपाद जी हरि बोल ऐसे किया तो भाग गया वो, फिर कभी नहीं आया। और एक भूत पर एक भूत भी मिला था, तो उससे प्रभुपाद जी ने बोले कि तुम इस योनि में तड़प रहे हो, तुम्हें हरे कृष्ण मंत्र जपो और तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। प्रभुपाद जी उनसे कराया हरे कृष्ण मंत्र, तो वो क्या हुआ, मुक्ति प्राप्त कर लिया। तो भूत आपके सामने आएगा तो बहुत जोर जोर से हरे कृष्ण मंत्र बोलिए, ठीक है, तो भाग जाएगा। और अगर डर भूत को देखकर डर जाओगे तो आपके पीछे पीछे आ जाएगा, ठीक है। और किसी का प्रश्न, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा, सुनिए कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। आज का जो प्रसादम स्पॉन्सर किया गया है विजय अरोरा की तरफ